नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संचार साथी ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए इस ऐप को पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य नहीं बनाने का फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जब चाहे इस ऐप को हटा सकते हैं और इस ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। संचार मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि अब तक 1,40,00,000 उपयोगकर्ताओं ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और प्रतिदिन धोखाधड़ी से संबंधित 2,000 घटनाएं सामने आ रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये ऐप सुरक्षित है और इसका उद्देश्य साइबर अपराध से लोगों को बचाना है। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 को विचार और पारित कराने के लिए रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सदन में ये विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1984 में संशोधन करना है। इसमें भारत में निर्मित तथा उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रहित करने का प्रावधान है। विधेयक का उद्देश्य तंबाकू के उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर को संशोधित करना है ताकि इन उत्पादों पर करों की दर को मौजूदा स्तर पर रखा जा सके। इस विधेयक के तहत कच्चे तंबाकू, बने हुए तंबाकू से बने उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि एआई जनित डीप फेक की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक नया मसौदा नियम प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
हमें सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज पर, एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की सख्त जरूरत है।
नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के कारण 23 लाख से अधिक शिकायतों में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की बचत हुई है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि आज लगभग 64% नागरिक कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे भारत दुनिया में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ देने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। आज नई दिल्ली में इंडिया एज 2025 सम्मेलन में उन्होंने पुराने श्रम कानूनों को नई श्रम संहिताओं में समेकित करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए श्रम कानूनों में बदलाव लाने पर जोर दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ दया नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि 2024 के पैरालंपिक खेलों में देश ने 29 पदक जीते जो भारतीय पैरा एथलीटों द्वारा स्थापित प्रगति के मानक को दर्शाता है।
समाज और सरकार की सजगता और सक्रियता के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 29 पदक प्राप्त किए थे। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं और प्रतिस्पर्धाओं को आयोजन करके सरकार द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
आकाशवाणी समाचार आज पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिन आंगमो के साथ एक बातचीत प्रसारित करेगा। ये पॉडकास्ट आज शाम 5:30 पर आकाशवाणी की एफएम गोल्ड चैनल 101.1 पर सुना जा सकता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 47वें ओवर में 5 विकेट पर 325 रन बना लिए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने 105 और विराट कोहली ने 102 रन की शतकीय पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।